प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि आप सब भी हमारे साथ आज का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एस्तर नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। ये पुस्तक रानी एस्तर के विषय में हमें बताती है कि किस प्रकार उसने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ शक्ति के आधार पर अपनी जाति के लोगों को बचाने के लिए कार्य किया और अंत में वो कहां तक सफल रही, ये सब जानने के लिए आइए आज के अध्ययन में हम सम्मिलित हों। किंतु इससे पूर्व आइए मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय श्रोता नमस्कार। मुझे आशा है कि ये संगीत रचना आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि संगीत चीज ही ऐसी है कि हर कोई पसंद करता है। प्रिय श्रोता, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की भाग दौड़ में हर कोई भाग रहा है, हर व्यक्ति इनाम पाना चाहता है, परंतु पाता वही है जो अंत तक दौड़ता है। प्रश्न ये है कि दौड़ते तो सब हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही पाता है। जी हाँ, पुरस्कार वही पाता है जिसने उस विषय पर अध्ययन किया हो तथा जिसने अभ्यास किया होता है, जिसने दिन रात उसी पर विचार किया होता है और परिश्रम किया होता है। परंतु इस संसार की यह दौड़ एक दिन समाप्त हो जाएगी, धन संपत्ति भी समाप्त हो जाएगी, दोस्ती खत्म हो जाएगी, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सब समाप्त हो जाएंगे, आपकी दौलत भी समाप्त हो जाएगी, आपकी पत्नी का प्रेम समाप्त हो जाएगा। तो अब क्या बचा? कुछ भी तो नहीं। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, वह है परमेश्वर का प्रेम जो उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। यानी परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि वो हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार करे। आज के बाइबल अध्ययन में हम एस्तर की पुस्तक उसके आखिरी अध्यायों का अध्ययन करेंगे, यानी हम 9 और 10 अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप मेरे साथ अपनी बाइबल में देखें, 9 अध्याय के पहले और दूसरे पद को मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, 12वें महीने अर्थात अदार माह के 13वें दिन, जब राज आज्ञा और नियम कार्यान्वित किए जाने वाले थे और जब यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, तभी उनकी आशा के विपरीत यहूदी उन पर प्रबल हो गए। शेयर्ष राजा के सब प्रांतों में यहूदी अपने अपने नगरों में एकत्रित हो गए कि जो कोई उनकी हानि करने का प्रयास करे उन पर हाथ उठाएं, और कोई उनके सामने टिक ना सका, क्योंकि समस्त जातियों पर उनका भय छा गया था। प्रिय मित्र, जब हम कमजोर होते हैं तब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, क्योंकि आक्रमण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। यहूदियों के साथ भी ऐसा ही था, परंतु अब उनमें वह शक्ति वापस आ गई थी। वह बलवान हो गए थे, वह संगठित हो गए थे, वह अकेले नहीं रहे, परंतु उनके पास उनके साथ राज आज्ञा थी। अर्थात राज आज्ञा के पाते ही उनमें एक नई खुशी दौड़ पड़ी, वे अपना दुख भूल गए और एक बार फिर से वो उत्साहित हो गए। आइए हम 3 और 4 पद को पढ़ लें। लिखा है, प्रांतों के सब उच्च अधिकारियों, अधिपतियों, प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मोर्दके का भय समा गया था। राजभवन में तो मोर्दके का बड़ा प्रभाव था, उसकी ख्याति समस्त प्रांतों में फैल गई थी और इस पुरुष मोर्दके की प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। प्रिय मित्र, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि मोर्दके जो एक समय में राख में बैठकर और कपड़े उतारकर विलाप किया करता था, आज वह एक उच्च पदधारी बन चुका है। जिस हमान ने उसके विरुद्ध फांसी का खंभा खड़ा किया था, वही उस पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज मोर्दके ने अपने लोगों को बचा लिया। प्यारे मित्र, परमेश्वर आज मुझे और आपको एक महान सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और उसके 33 और 34 पद में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है, वह कौन है जो दोष लगाएगा? मसीह यीशु ही है जो मरा, हाँ वरन वह मृतकों में से जिलाया गया, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, परंतु पुनः तीसरे दिन जीवित हो गया और आज परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और आज हमारे लिए जीवन को बचाने के लिए निवेदन कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। दुनिया आपसे घृणा कर सकती है, परंतु ये दुख, ये चिंता, ये बीमारियां, ये अकेलापन सब समाप्त हो जाएगा। आइए हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर 16 तक। लिखा है, जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रखे। वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाएं कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुलाता है तथा आपकी सहायता करना चाहता है, परंतु आपको उसके सम्मुख रहना होगा, अर्थात उससे व्यक्तिगत संबंध बनाना होगा। वह अवश्य आपके निवेदन को सुनेगा और स्वीकार करेगा। हमारे पास ऐसा उद्धारकर्ता है जिसको हमने ठुकरा दिया था। दुनिया ने उसका तिरस्कार किया, उस पर विभिन्न प्रकार के दोष लगाए, परंतु उसने सब कुछ मेरे और आपके लिए सह लिया। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वह शोषण की घाटियों का फूल, वह हम सब का प्रिय है। प्रिय श्रोता मित्र, आज इस समय आप इस सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इस समय हो सकता है आप किसी चिंताओं में डूबे हुए हैं, या हो सकता है आपका सब कुछ बर्बाद हो गया हो, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आप अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि उसने कहा, ऐ पापों के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज कोई व्यक्ति किसी को आराम नहीं दे सकता। इस बात से मुझे एक गजल का शेर याद आ गया। किसी ने कहा, लोग बहरे हैं, इन्हें दिल की सुनाया ना करो, बंद दरवाजों पे आवाज लगाया ना करो। परंतु एक है जो सारी चिंताओं व बीमारियों से आपको आराम दे सकता है, जिसे इन सब चिंताओं व बीमारियों पर अधिकार है, वह है हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह। हाँ, यदि आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि आपका जीवन दुखी रहे, क्योंकि उसने हमारे सारे दुखों को व पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। जितना हम उसके नजदीक होंगे, वह भी उतना ही हमारे करीब होगा। यदि कुछ इसराइली एस्तर के समय ऐसा कहते कि हम नई राजाज्ञा पर विश्वास नहीं करते हैं, वह राजा ठीक नहीं है, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, हम अपना मार्ग अच्छी तरह जानते हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए एक किला बनाएंगे और चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार खड़ी कर देंगे, परंतु क्या यह उचित है या नहीं, क्योंकि ये यहूदियों के लिए राजा की आज्ञा है और इस आज्ञा को कोई भी रोक नहीं सकता था। यहूदियों ने राजा की राजाज्ञा पर विश्वास किया। मित्रवर, हमको भी परमेश्वर के संदेश पर विश्वास करना है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस की पहली पत्री और उसके 15वें अध्याय का 3 पद मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, मैंने ये बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रिय मित्र, इस प्रकार से हमें यह संदेश दिया गया है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और मूल्य चुका दिया। हमें इस पर विश्वास करना है और जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, हम मृत्यु से नहीं बच सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उस पर दृढ़ता से विश्वास करें और पाप की मृत्यु से बच जाएं। ये आज्ञा परमेश्वर के खोए हुओं के लिए दी गई है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रिय मित्र, जैसा आपने सुना कि वह आपको बचाना चाहता है, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और आपके लिए ही अपना लहू बहाया ताकि इस संसार के पाप से बच सकें। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने परमेश्वर की महान शक्ति को पाया क्योंकि उन्होंने संदेश पर विश्वास किया। परमेश्वर का यह संदेश आज आपको बचाना चाहता है। मेरे भाई, आप बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, बुराई से छुटकारा पा सकते हैं, उन तमाम बुरी आदतों को त्याग सकते हैं, परंतु उसके लिए एक ही मार्ग है कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, और जब आप विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार होगा। यहूदियों ने राज आज्ञा पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उनके पास कोई आशा नहीं थी, परंतु जब उन्होंने विश्वास किया, उनको आनंद मिला, उन्हें शांति मिली, उनके दुख दूर हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये राज आज्ञा उन्हें उनके दुख से दूर कर सकती है। आइए हम 9वें अध्याय का 20वां पद पढ़ लें। लिखा है, इन बातों का वृतांत लिखकर मोर्दके ने उन समस्त यहूदियों को जो राजा शेयर्ष के सब प्रांतों में क्या दूर और क्या पास रहते थे चिट्ठियां भेजी। इस प्रकार से सारी चिट्ठियां भेज दी गई, जिससे यहूदी लोग जो घबराए हुए थे उन्हें बहुत शांति मिली। आइए हम 9 अध्याय के 26 व 27 पद को पढ़ लें। लिखा है, इसलिए ये दिन पूर के नाम पर पुरीम कहलाए, और इस पत्र के सब निर्देशों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस संबंध में स्वयं देखा था और उनके साथ जो कुछ हुआ था उसके कारण भी यहूदियों ने अपने तथा अपनी संतान और उन सबों के लिए जो उनमें मिल गए थे एक प्रथा ठहरा दी, जिससे कि वह नियमानुसार नियुक्त तिथि पर इन 2 दिनों को प्रतिवर्ष अवश्य मनाएं। प्रिय श्रोता, किस प्रकार से ये दिन ठहरा दिए गए? क्योंकि ये एक स्मरणीय दिन बन गया। मोर्दके ने ये आज्ञा निकाल दी कि इस दिन को पर्व के रूप में मनाया जाए, क्योंकि हमको मोर्दके ने हमान की क्रूर एवं विकट संकट से बचाया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 3रे पद में हम देखते हैं, लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे शाप देंगे मैं उन्हें शाप दूंगा, और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। प्रिय श्रोता, एस्तर की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 28वें पद में लिखा है, और ये दिन पीढ़ी पीढ़ी, कुल कुल, प्रांत प्रांत और नगर नगर में स्मरण किए और मनाए जाएं, और पुरीम के ये दिन यहूदियों में से कभी ना मिटें, और इनका स्मरण उनके वंश से जाता ना रहे। प्रिय मित्र, आगे एस्तर की पुस्तक में अंतिम बातें हमको परमेश्वर के और अधिक निकट लाती हैं। आइए हम 10वें अध्याय के 1 से 3 पद तक पढ़ लें। लिखा है, राजा शेयर्ष ने अपने देश तथा समुद्र के तटवर्ती प्रदेशों पर कर लगाया, और उसके सामर्थ्य और पराक्रम के सब कार्य और मोर्दके को राजा के द्वारा दिया गया महान पद, क्या इनका संपूर्ण विवरण मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? यहूदी मोर्दके का पद तो शेयर्ष राजा के बाद दूसरा था, और वह यहूदियों में महान था और अपने सब कुटुंबियों का प्राण पात्र था, क्योंकि वह अपने जाति भाइयों की भलाई की खोज में लगा रहता था और अपने संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के कुशल क्षेम की बातें करता था। प्रिय मित्र, मोर्दके अपने जाति भाइयों और लोगों को बचाने की खोज में रहता था, परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी उस उद्धारकर्ता की महान आज्ञा को मान लें, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आप चिल्लाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब आप कहेंगे, परमेश्वर हमारी रखवाली कर। लेकिन याद रखें कि उस समय आपको बचाने के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। ये समय है कि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। वह आपके धन को नहीं चाहता, वह आपकी संपत्ति को नहीं चाहता, वह आपकी झूठी भक्ति को नहीं चाहता। हाँ, वह आपके हृदय को चाहता है, वह आपके उस टूटे हुए हृदय को चाहता है। मेरे मित्र, वह हमान द्वारा आज्ञाओं को देकर आज आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। वो कौन है? वो है शैतान। परंतु प्रिय मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछना चाहते हैं। वो आपके पापों से आपको मुक्ति देना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:16 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रवर, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अरबपति हो या करोड़पति हो, निर्धन हो या गरीब हो, चाहे कोई अपराधी हो या पापी हो, या चाहे कोई जेल में हो या बाहर हो, निमंत्रण सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह आज हर एक के लिए अपने हाथों को फैलाए हुए खड़े हैं। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो वह आपकी सारी चिंताएं, सारे दुख दूर कर देगा। मैं प्रभु में होकर आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप आज ही उसके पास आएं। एक दिन इस निमंत्रण पत्र की तारीख समाप्त हो जाएगी, फिर वह दिन नहीं रहेगा। आज आपके पास समय है। यदि आज आप उस पर विश्वास करें तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस बाइबल अध्ययन से आपको बहुत शांति मिली है और आपने बहुत कुछ सीखा है। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। अंत में केवल यही कहूंगा कि परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे अपने हृदय में वास करने दें। तो इन्हीं वचनों के साथ आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम समाप्त होता है। परमेश्वर आपको शांति व आराम दे। आमीन। जी।
का कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोता, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।